अगली बात क्या है कि अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह हमें ईमान वाले बना दे ताकि हम अल्लाह ताला की दोस्ती में आ जाएं। बंदे को एक अल्लाह और आका की ज़रूरत है, अल्लाह ताला की ज़ाते कुदरत नुसरत इकतदार अता गिना कुव्वत और बका से मुत्तसिफ़ है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात में ये सब कुछ है। जो इन सिफात से मुत्तसिफ़ होगा वही खुदाए वाहिद मालिक और नगराने आला होगा। मुराद ये कि जो अल्लाह ताला की सिफात है ना, अगर ये बंदों में आ जाएं तो लोग भी उनसे मोहब्बत करें। कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जो बंदे को सुकून दे, जिससे वो मुतमईन हो और लो लगाए कि अल्लाह ही खौफजदों की पनाहगाह है, फरियाद करने वालों का फरियाद रस और जिनके घर नहीं उनका मददगार है बेखानुमा। और अल्लाह फरमाते हैं वइज़ तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी फरियाद सुनी। सूरह अनफाल की आयत 9 में गज़वे बदर की तरफ इशारा है। इसमें वो पनाह देता है, इसके अलावा कोई नहीं जो पनाह दे, बाकी अल्लाह के सिवा किसकी पनाह है, सोचने की बात है। इनके लिए इसके अलावा कोई भी दिली दोस्त और वली और सरपरस्त नहीं है। जो गैर अल्लाह की इबादत करे, अगरचे दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी हो और इसकी मोहब्बत की लज्जत भी से मिलती हो, लेकिन ये इसके लिए इससे बढ़कर फसाद अंगेज़ है जितना कि मसमूम खाना खाना। ये कौन सा होता है पता है आपको? हैरान होंगे सुन के, स्मोकी फूड। हम तो स्मोक धुआं लगाकर खाना खाते हैं ना, बारबेक्यू और इसी तरह, लेकिन जिस खाने में धुआं पड़ जाए वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कार्बन है, कार्बन मिक्स हो जाता है खाने में। लेकिन बहरहाल टेस्ट की वजह से बाज़ लोग कभी करते हैं ऐसा। अगर आसमानों ज़मीन में और भी खुदा होते तो वो दोनों फासिद हो जाते। अल्लाह अर्श का मालिक किससे पाक है जो ये बनाते हैं या जो ये बताते हैं? तो आसमानों ज़मीन में एक ही खुदा है, इसीलिए फसाद से बची हुई है दुनिया। आसमानों ज़मीन तो कायम ही इससे हैं कि वो अल्लाह को अज़ली मानते हैं। अगर अल्लाह के अलावा और भी खुदा होते तो अल्लाह माबूदे बरहक ना होता, क्योंकि ना अल्लाह का कोई हम नाम है ना इसकी कोई मिसल। तो अलूहियत के ना होने से आसमानों ज़मीन का कवाम बिगड़ जाता, यानी इंतज़ाम बिगड़ जाता, बैलेंस बिगड़ जाता। इससे मालूम होता है कि बंदा मजबूर है कि इसका एक इलाह हो जो इसका माबूद भी हो, इसका मददगार भी, यानी फ़ानी की ज़रूरत बाकी है। इसको हाईलाइट कीजिए, बंदा फ़ानी रब बाकी, तो फ़ानी को फना होने वाले को बाकी की ज़रूरत है। ज़ईफ़ की ताकतवर से, फ़कीर की मालदार से होती है। जो शख्स अल्लाह को इलाह नहीं मानता, इसे दूसरी अशिया सूरतों और मरगूबात को इलाह मानना पड़ेगा। इस तरह वो ला मुहल्ला इनका बंदा और ग़ुलाम बनकर रह जाएगा। और अल्लाह ने कितना सच कहा, अफ़रईत मन इत्तख़ज़ इलाहहू हवाहू, क्या तुमने देखा इसे जिसने ख्वाहिशात को माबूद बना लिया? और एक जगह फरमाया, और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद बना दिए। हदीस में कि आपने हुसैन से पूछा, तुम कितनों की इबादत करते हो? बोले, 7 की, 6 ज़मीन में और 1 आसमान में। आपने दरियाफ्त किया, रग़बत और खौफ में तुम्हारे कौन काम आता है? कहा, वो जो आसमान में है। तो आपने फरमाया कि जो ज़मीन वालों को छोड़ दे, आसमान वाले की इबादत कर। यानी एक ऐसा शख्स जो बुतों का पुजारी था, कैसे खूबसूरत तरीके से आपने उसको तौहीद सिखा दी। ये जान लीजिए कि बंदे का अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत का मुख्ताज होना ऐसी बात है जिसकी कोई नज़ीर नहीं। ताहम वो बाज़ वजूह से ऐसी है जैसे जिस्म को खाने और पीने की ज़रूरत है। इनके माबैन बहुत से फ़र्क भी हैं। वजह यह है कि आदमी की हकीकत इसका कल्ब और रूह है, और यह हकीकत अल्लाह इलाहुन वाहिद के ज़रिए ही कायम हो सकती है। इसके कल्ब और रूह को अल्लाह के ज़िक्र से ही सुकून मिलेगा। वो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए बेचैन रहते हैं और एक दिन इससे ज़रूर मिलेंगे। इसके मिले बगैर वो ठीक नहीं रह सकते। यानी जो मोमिन की रूह है ना, वो मचलती है, उसको तो एक ही फ़िक्र है कि मेरे रब से मेरी मुलाकात कब होगी। ये दुनिया में तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, अपना वक्त पूरा कर रहा है, लेकिन असल उसको आगे की फ़िक्र है। इसीलिए जो अल्लाह ताला से मुलाकात चाहेगा, अल्लाह इससे मोहब्बत करेगा। इसके बरक्स वो है जो ऐसा ना चाहे। लिहाजा अल्लाह की रहमत और फजल चाहो, भरोसे पर ना बैठ जाओ। और अगर अल्लाह के बगैर किसी को लज्जत और सुरूर मिले भी, तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, बल्कि एक नौ से दूसरी और एक शख्स से दूसरे तक मुंतकिल होते रहेंगे। कभी इसका आकाए नेमत इसे ऐशो आराम देगा, और कभी इसे ना सिर्फ ऐश और आराम से महरूम कर देगा, بلکہ اس کا وجود اور ملاقات بھی گوارا نہ کرے گا، جبکہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کاش کہ تو راضی رہے تیری رضا کے ساتھ، اگر تمام لوگ بھی ناراض ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، میری منتہائے امید یہی ہے۔ یعنی امیدوں کی انتہا یہ رکھیے کہ اللہ نہ ناراض ہو، بندوں کی خیر ہے، مان جائیں گے، آج ناراض ہیں کل راضی بھی ہو جائیں گے، اور اللہ ہی ان کو راضی کرتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاتھوں میں بندوں کے دل ہیں۔ اور یہاں ایک شاعر ہیں اکوک، انہوں نے امیر ابو دلف کی مداح میں کہا، تم جب بھی اپنے ہاتھ خیر کے ساتھ پھیلاتے ہو تو بہت ساروں کی روزی روٹی کا فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ نے اس پر مامون کو مسلط کر دیا جس نے اس شعر کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ یعنی ایسے حکمرانوں کے اوپر چوٹ پڑتی ہے نا کہ ہمارے سوا کسی اور کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا، اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں اور ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا سیکھا ہم نے اس میں؟ کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان لے آئیے، دوستیاں خود بخود مل جائیں گی۔ سوال لکھیے کہ اللہ کی محبت کے حقدار کون ہے، کن کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کن کی بات کرتا ہے۔ پورے قرآن کو کھول لیجئے تو سب سے پہلے احسان کرنے والوں کو، پھر توبہ کرنے والوں کو، پھر پاک رہنے والوں کو، پھر پرہیزگاروں کو یعنی متقین کو، پھر صبر کرنے والوں کو، اور پھر توکل کرنے والوں سے، اور پھر عدل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ کی محبت کے حقدار بنا دے۔ حقدار تو ہم کوئی نہیں ہیں، اللہ بس کسی کنارے سے نکال کے کوئی ایک عادت ہماری پسند کر کے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ اور ترمذی کی روایت ہے 3389، صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں میں ایک جملہ جو 3 بار دہرا لیجئے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو راضی بھی کر دے گا، اور وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیشن، میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں راضی کر دے، اور جتنے آپ اللہ سے راضی ہوں گے اللہ بھی آپ سے اتنا ہی راضی ہوگا۔ پھر اگلی بات، کامیابی چاہنے والوں کے لیے نشان منزل یا نشان راہ۔ سعادت و فلاح کی کچھ صاف اور نمایاں علامتیں ہیں، یہ نشان راہ ہی انسان کی کامیابی، کامرانی اور ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ سعادت اور فلاح کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا علم بڑھے تو اس کی تواضع اور رحم دلی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی گہرے آبدار ہے کہ جتنی زیادہ چمک اور نفاست ہوگی اتنے ہی گہرے پانیوں میں ہوگا۔ ایسا آدمی محسوس کرے گا کہ علم اللہ کی عطا کردہ دولت ہے جس کو دے کر اللہ عظمت ہے۔ اگر وہ اچھا حامل علم اور بہتر شکر گزار ہوا تو اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور علم والوں کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے یہ، اللہ اکبر۔ جتنا زیادہ اس کا علم ہوگا اس کا خوف بھی بڑھے گا، کیونکہ اس کو لغزش قدم، لغزش زبان اور دل کے پلٹ جانے کا خوف لاحق رہے گا، ہوشیار و بیدار پرندے کی طرح جو مسلسل چکنا رہتا ہے اور نگرانی کرتا ہے۔ وہ پھدک پھدک کر کبھی اس درخت پر، کبھی اس پر بیٹھتا رہتا ہے، اسے شکاریوں سے اور اچانک لگنے والی گولی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح جتنی اس کی عمر ہوگی اتنی ہی اس کی حرص ختم ہوگی، وقت کے ساتھ کچھ چیزیں دب ہی جاتی ہیں۔ اسے یقینی علم ہوگا کہ بس سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے، راستہ ختم ہوا، منزل آ گئی۔ اسی طرح جتنا مال میں اضافہ ہوگا اس کے جود و سخا میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی زیادہ جنرس ہو جائے گا، مال بانٹے گا لوگوں کو، کیونکہ مال آریت ہے، ادھار ملا ہوا ہے، دینے والا امتحان لے رہا ہے۔ کون؟ تبارک الذی، اللہ کی ذات امتحان لے رہا ہے ہمارا۔ امتحانات ہر طرح کے ہیں، موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اسی طرح جتنا اس کے جاہ و منصب میں ترقی ہوگی اتنا ہی وہ لوگوں سے قریب ہوگا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان سے تواضع کے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ محبوب ہیں جو انہیں زیادہ فائدہ پہنچائے، یعنی جو بندوں کو فائدہ دیتا ہے अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अल्लाह ख़ुद अपने बंदों का इतना ख्याल रखता है, तो अगर बंदे उसके बंदों का ख्याल रखेंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे। इसके बरक्स बदबख्ती की अलामतें ये हैं, नोट कीजिएगा। पहली बात है, इल्म में इजाफे से तकब्बुर और गुरूर बढ़ेगा, यानी इल्म को अपने लिए एक ऑनर और एक फ़ख्र करने वाली चीज़ बनाएगा। मैंने ये पढ़ा, मैंने वहाँ से पढ़ा, मैंने उससे पढ़ा, मुझे उस इदारे से पढ़ना है, मुझे उस उस्ताद से पढ़ना है, ताकि मेरी ज़रा शोहरत अच्छी हो जाए, मेरा तारुफ जब कोई कराए तो चार अच्छे नाम बीच में आने लगें। याद रखिए कि हर इल्म बंदे को पिघलाता नहीं है, कुछ इल्म इंसान को और सख्त कर देते हैं। फिर इसी तरह इसका इल्म फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, इसका दिल खाली होगा, तबीयत गर्म और मिजाज में दुरुस्ती और शिद्दत होगी। इसका अमल बढ़ेगा तो फ़ख्र में और लोगों की तहकीर में और खुशफहमी में ज़्यादती होगी कि वो अकेला निजात याफ्ता है, बाकी हलाक होने वाले हैं। इसका बेड़ा पार है, दूसरे मंझधार में है, यानी ऐसा बंदा कामयाब होगा, बाकी अभी भंवर में फंसे हुए, समंदरों में है, दरियाओं में है। इसकी उम्र में इजाफे से इसकी हिरस बढ़ेगी, वो सेंध सेंध का रखने वाला और ना देने वाला होगा। हादसात से इसके अंदर तब्दीली ना होगी, मसाइब का असर ना होगा, आफतों से वो बेदार ना होगा। जितना माल बढ़ेगा उसका बुखल बढ़ेगा, क्योंकि इसका दिल आला इकदार से खाली, हाथ तंग और चेहरा सपाट और तारीक है। जितनी इसकी कदरों मंजिलत बढ़ेगी, इसके तकब्बुर और गुरूर में इजाफा होगा, यानी वो मगरूर, सख्त दिल, फूलने वाला और जल्दबाज होगा। रहम और मुरव्वत से आरी, लेकिन इंजाम के लिहाज से कुछ नहीं। फरमाए क़यामत में मुतकब्बिरीन को ज़र्रों की सूरत में लाया जाएगा, जिन्हें लोग पैरों से रोंद रहे होंगे। ये अमूर अल्लाह ताला की तरफ से इब्तला और इम्तिहान हैं, जिन में कुछ कामयाब और बामुराद निकलते हैं, कुछ नामुराद होते हैं। आप ख़ुद से पूछिए, कभी आपकी ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आया? कोई इम्तिहान दिया, आप कहेंगे जी वो 6th क्लास का दिया था, फिर 7th में आ गई थी। जी ऐसे इम्तिहान तो हम सब ने बहुत से दिए हैं। क्या कभी अल्लाह ने आपको मुश्किल में डाला? तो बस, कामयाबी चाहने वालों के लिए इम्तिहानात, आजमाइशें, बीमारियाँ निशाने राह, माइलस्टोन होते हैं। हर एक को तय करते जाइए और कामयाबियों के करीब से करीब आते जाइए। तो फिर लिखिए अपने लिए कि सआदत और फलाह की निशानियाँ क्या हैं, कौन सईद है और कौन फलाह पाता है। नंबर एक, जो अपने इल्म में इजाफा करता है, लेकिन सख्ती के लिए नहीं, नरमी के लिए, और तज्जिया और तज़किया और अल्लाह का कुर्ब और आजजी और इबादत अच्छी और नमाज़ें अच्छी, रोज़े अच्छे और मामलात अच्छे और डाउन टू अर्थ। फिर तवाज़ो और रहम दिली में इजाफा होगा, दर्जात में बुलंदी होगी, शुक्रगुजारी और खौफ खुदा में इजाफा होगा, सखावत में बढ़ेगा और बिल आखिर वमा यन्फ़ौ नासु फ़यम्कुस, वो लोगों को नफ़ा देगा। जितना लोगों को नफ़ा देने के काबिल बन सकते हैं, जल्दी से बन जाइए, जितना डिले करेंगे उतना पीछे रहेंगे। इसके बरक्स इल्म में इजाफे से बदबख्ती आए, इसकी क्या अलामतें हैं? ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। तो पहली बात है, तकब्बुर और गुरूर में इजाफा होगा, मिजाज में दुरुस्ती आएगी, लोगों की तहकीर में इजाफा होगा, खुशफहमियों में इजाफा होगा, दुनियावी हिरस में इजाफा होगा। ये जो रिवायत है ना कि इल्म से दर्जात में बुलंदी है, अबू दाऊद की रिवायत है, ये 3641 और बहुत मरूफ रिवायत है। आपने अपने हर कोर्स के शुरू में सुनी होगी, अगर आपने कुरान कोर्सेज किए हैं तो, कि जब इंसान इल्म लेने जाते हैं, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि अबू दरदा की तरफ से इस वाक़े की निस्बत है ना, कुसैर बिन कैस कहते हैं कि मैं अबू दरदा के बाद दमिश्क की मस्जिद में बैठा था, इतने में एक शख्स आया, कहने लगे अबू दरदा मैं आपके पास रसूलुल्लाह के शहर से इस हदीस के लिए आया हूँ जिसके मुतल्लिक मुझे ये खबर मिली कि आप इसे अल्लाह के नबी से रिवायत करते हैं, यानी सनद ऊंची की ना, अल्लाह के नबी से इन्होंने सुना और इन्होंने डायरेक्ट आकर इनसे सुन लिया। इसके अलावा और कोई गरज नहीं। पहले आप मैं सोचें, हम ये फैज़ लेते हैं, इल्म का फैज़ बराह रास्त अपने कानों से सुनी। मैं पास था जब ये बात हुई, मैंने अपने कानों से सुनी, मैं वहाँ बैठा हुआ था, कि हमारे लिए इल्म की इतनी कदर है। हम तो रौनक के साथ अब इल्म लेते हैं, आराम से लेते हैं, कुर्सी मेज़ पे बैठ कर लेते हैं, हम तो टेक लगा के इल्म लेना चाहते हैं। हम आज इल्म को लेकर अपने जिस्म को हल्की सी हरकत भी नहीं देना चाहते। अबू दरदा कहाँ बैठे हैं? सहाबी थे। देखिए ये हदीस इनको पता थी पहले से जो शख्स पूछने आया, लेकिन इनसे क्यों पूछने आया कि जब कल इस हदीस का तذکرہ होगा ना तो क्या होगा? अने रसूलिल्लाह, फिर अन अबू दरदा और अन फुला, इनका नाम अबू दरदा के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, वरना पता नहीं कितने लोगों के बाद शायद इनका नाम आता। अल्लाह हमें ऐसा इल्म लगने वाला बना दे आजसी और मोहब्बत के साथ। फिर आप देखिए जो हदीस सुनी होगी तो सारी थकन दूर हो गई ना। और ऐसी ही एक रिवायत आप जानते हैं कि और सहाबी से भी मिलती है कि जो वाकई इल्म के लिए सफ़र करते हुए मदीना से मुल्क शाम पहुंचे थे। अल्लाह अकबर। हदीस सुन लीजिए अबू दरदा ने जो बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स तलबे इल्म के लिए रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इसे जन्नत की राह पर चलाते हैं। रोड टू जन्ना, सबीलुल जन्ना इल्म के थ्रू आता है। और फरिश्ते तालिब इल्म की बख्शिश की दुआ करते हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी में दुआएं करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात की तमाम सितारों पर। और उलमा अम्बिया के वारिस हैं, और नबियों ने अपना वारिस दिरहम और दीनार का नहीं बनाया बल्कि इल्म का वारिस बनाया। तो जिसने इल्म हासिल किया इसने एक वाफर हिस्सा लिया। एक एक लफ्ज़ दिल पे लेने वाला है। आप बताइए ज़रा से कि क्या इल्म के लिए सफ़र किया जा सकता? अब तो मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ कि जितना घर बैठकर इल्म ले रहे हैं हम उतने ही इल्म से कोरे नहीं होते जा रहे। सहूलत मिल गई ना, आसानी मिल गई, हमारी मर्जियों के वक्त, हमारी मर्जियों की चॉइस, चार दफ़ा सुन लो, आगे करके सुन लो, रिकॉर्डिंग से सुन लो। अल्लाह करे कि ये इल्म हमारे लिए नाफे हो जाए। और एक मशहूर कौल, कामयाब होने का असूल, दुनिया में हर चीज़ दोबारा बनती है, एक बार किसी के जहन में, दूसरी बार दुनिया में। अगर आपके जहन में आपकी कामयाबी की तस्वीर नहीं तो हकीकत में आप कामयाब नहीं होंगे। यानी पहले अपने जहन में अपनी कामयाबी की तस्वीर बनाइए, फिर दूसरे मानेंगे। और याद रखिए कि इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जो इमेजिन कर सकता है, तसव्वुर है जिसके पास। आप अच्छे तसव्वुरात रखिए, आपकी ज़िंदगी का मेयार इसी से मुतय्यन होगा। आप पहले कामयाब होने का एक ख्वाब बनाइए, फिर इसमें हकीकत का रंग डालिए। और अल्लाह करे कि हम अपने बारे में अच्छे अच्छे ख्वाब देखने वालों में शामिल हो जाएं। नेक्स्ट टिप देखिए, बड़ा मर्तबा भी इब्तला है। अल्लाह हुक्म। ये दूर से नहीं पता चलता, दूर से बड़ा ग्लैमर लगता है, वाह क्या रैंक है, क्या बड़ाई है, क्या बड़े हैं ये। हालांकि आप करीब आकर देखें, जितनी शोहरत होगी उतने फितने ज़्यादा, उतनी आजमाइशें ज़्यादा, परेशानियाँ ज़्यादा। आपका जितना रैंक बड़ा होता जाता है उतनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा, ज़रा सी कोताही बहुत बड़े नुकसान का ज़रिया बनेगी। बादशाहत हो या इक्तदार और माल भी, सब इब्तला है, क्योंकि ये बड़े टाइटल्स हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, जब उन्होंने बिल्किस के तख्त को अपने पास देखा तो कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफर। यानी नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, और इतनी इम्पॉसिबल चीज़ होती देखी तो कहा कि ये मेरी आजमाइश है। अल्लाह करे कि हम भी इन चीज़ों को समझें। यानी अल्लाह ताला नेमतें देकर ये देखता है कि कौन है जो इन्हें अच्छी तरह कबूल करता है, शुक्रगुजारी का रवैया अपनाता है, इनकी हिफाजत करता है, इनसे फ़ायदा उठाता है और दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है। और कौन है जो कुफराने नेमत करता है, इनकी नाकदरी करता है और अल्लाह की नाफरमानी और मुखालफत में इनको खर्च करता है। इसी तरह नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें हैं, इम्तिहान हैं, इनसे शुक्रगुजार और काफिर का फ़र्क मालूम हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे इब्तला और आजमाइशें भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती हैं। और अल्लाह ताला इस बात को तो कुरान पाक में कई जगह फरमाते हैं, जैसे इंसान का मामला तो ये है कि इसे इसका रब आजमाता है, तो अगर इसका इकराम हुआ और नेमतें मिली तो कहता है कि मेरे रब ने मेरे साथ करम फरमाया। और आजमाइश अगर रोज़ी में तंगी से होती है तो कहेगा कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की, हरगिज़ नहीं। यानी इंसान अपने ऊपर आई हुई आजमाइश को भी नहीं समझता और अपनी तरफ आई हुई खैर को भी नहीं समझता। मतलब ये कि बंदे का गुमान सही नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने फरावानी से नेमतें दी तो ज़रूरी नहीं कि वो इसकी तरफ से इसका इकराम हो। इसी तरह जिसका रिस्क तंग कर दिया और उसे आजमाइश में डाल दिया। ज़रूरी नहीं कि वो इसकी तरफ से इसकी एहानत ही हो, यानी तंगी जो है वो अल्लाह की तरफ से बंदे की एहानत नहीं है, और बहुत मिल जाना अल्लाह की रज़ा की अलामत नहीं है। तो क्या पता चला कि आपको जितने बड़े मर्तबे मिले आप उतनी बड़ी आजमाइश में हैं। और हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, हर गाड़ी इम्तिहान का पर्चा। घर आई हर नेमत को देखकर कहा करे कि एक तू भी पर्चा है जिसको मैंने हल करना है। उन नेमतों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, असल ये चीज़ है। और जिसको नेमतों का इस्तेमाल करना आ गया, फिर बड़ी से बड़ी नेमत भी उसको नुकसान नहीं देगी। सवाल पैदा होता है कि इंसान को नेमतें देकर अल्लाह ताला क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इंसान शुक्रगुजार बनता है या नहीं, नेमतों की हिफाजत करता है कि नहीं, इन से फ़ायदा उठाता है कि नहीं, दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है या नहीं, और अल्लाह की नाफरमानी और मुखालफत में तो नहीं पड़ जाता। ज़रा सोचिए, अक्सर लोगों के नेमतों के पर्चे में कितने नंबर आते होंगे? क्या ये 5-6 सवालों के जवाब में यस है कि नो? हर एक अपने से पूछे। और इब्तला और आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से है ही इम्तिहान। और ये जो सूरह फजर की आयतें अभी आपसे शेयर की, 15-16, ये भी तो यही बताते हैं ना कि इंसान ना खुशी को पहचान सका ना गम को। सोचिए ज़रा, क्या आप और मैं अपनी नेमतों का हिसाब दे सकते हैं? नहीं कर सकते, मुश्किल है, हमारे इख्तियार में नहीं है। नई टिप ले लेते हैं, बाकी रहने वाले खजाने ये किसके पास है? अलबाकी के पास। हाँ, इंसानों के पास कुछ ऐसी नेकियां हैं कि जो उसके बाद बाकियातुस सालेहात बनेंगी। इस्लाम, ईमान, एहसान, बिर व तकवा, हिजरत और जिहाद, तौबा और इनाबत की अजीम नेमतें और बेहतरीन तोहफे ही हैं। वो ख़जाने जो मालिकों के पास रह जाएंगे और इनके साथ कियामत तक जाएंगी। पूछिए, ये है मेरे पास? नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ अपना रुख करो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह और यौम आखरत पर, मलाइका, किताबों और नबियों पर ईमान लाया और माल की मोहब्बत के बावजूद इसे रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों पर खर्च किया, नमाज कायम की, ज़कात दी। जो अपने अहदो पैमान को पूरा करते हैं, बदहाली और तंग हाली में सब्र करते हैं, ऐसे ही लोग सच्चे और तकवा वाले हैं। तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास बाकी रहने वाले खजाने हैं? ईमान और इस्लाम है मेरे पास? क्या ईमान का लेवल है मेरे, मैं इस्लाम की किस सीढ़ी पे खड़ी हूँ? क्या एहसान के दर्जे पे जी रही हूँ? बिर और तकवा है, हिजरत और जिहाद है, तौबा और इनाबत है। अगर है तो मुबारक हो आपको, कामयाब हैं आप। हम इन चीज़ों को डीवैल्यूएट करते हैं, सोने चांदी कपड़े जेवर को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं, हालांकि वो भी नेमते हैं, लेकिन ये उन नेमतों से बड़ी नेमत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि नेकी का मेयार क्या है। अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान सबसे ऊपर, आयते बिर को याद कर लीजिए हाँ, फिर मलाइका, किताबों और नबियों पर ईमान, नमाज कायम करना और ज़कात देना, अहदो पैमान को पूरा करना, माल खर्च करना, यानी ऊपर से शुरू हो तो नीचे तक कई चीज़ें हैं आपके सामने। तो क्या पता चला, अपनी आदात और अपने मामलात को ऐसा खूबसूरत रखिए कि एहसान के दर्जे पे जिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमालियाती हिम्मत और हौसला। हमालिया सबको पता है एक पहाड़ है, बहुत बड़ा है। बस सफ़र ज़िंदगी में जीने के लिए हमें हमालिया पहाड़ जितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है और इतने हौसले की। खुद से पूछिए, है आप में से किसी को कहा जाए कि कोहे हमालिया को सर करो तो कर लेंगे? सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता पीछे लग जाए और जान बचाने के लिए हमालिया के ऊपर ही चढ़ना पड़े, तो देखिए आप कितनी जल्दी उस सफ़र को तय कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी मुसीबतें और तकलीफ़ें आ जाती हैं जो हमें फिर बहुत बाहिम्मत कर देती हैं। तो अगर इंसान को बुलंद हौसला अरजानी हो जाए तो फ़ज़ाइल की राहों में बढ़ता और बुलंदियों के दर्जे तय करता चला जाए। मतलब यह कि अगर मुमकिन हो, आसान हो, तो इंसान फिर ऐसा कर ले। इस्लामी खसाइस में से यह है कि बंदा बुलंद हिम्मत हो, उसके मकसद जलील हों, हदफ नबील हो और गायत अजीमा हो। बड़े बड़े मुश्किल नाम है। मुराद यह कि इंसान को बुलंद हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही इंसान की शख्सियत में असबात और नफ़ी का मरकज़ है, यानी यस और नो, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। जवारे की निगरान है वो महसूस ईंधन और शोला बदामा कुव्वत है जो इंसान को माली और मुहामित में मुसाबकत पर उभारती है। क्या मतलब है ऊपर जाने पे? ऐसा बंदा जिसकी दूसरे तारीफ करें, इसमें मुकाबला करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, ये चीज़ इंसान के अंदर मुश्किलात में डलने के बाद आती है। बुलंद हिम्मती अल्लाह के इज़्ज़त से आपको गैर मुनक़ते खैर से नवाजेगी, यानी ऐसी खैर आएगी जो कभी क़त्अ नहीं होगी, कभी रुकेगी नहीं, अनस्टॉप्ड दर्जे कमाल से सरफराज करेगी। लोग आपको फ़ज़ाइल के बाप पर खड़ा देखेंगे, इल्म व अमल के मैदान में तेज़ मुसाबकत और मर्दानगी का लहू आपकी रगों में दौड़ेगा। आपके हाथ मुहिमाते उमूर के लिए ही फैलेंगी, यानी बड़ी बड़े काम, मुहिम कहते हैं बड़े काम को, मुहिम, ऐसी चीज़ें आपकी होंगी और साबिकीन और कायदीन का मुकाबला करेंगे, यानी आपके सामने बड़े बड़े लोग होंगे जिनको आप कम्पीट करेंगे। कम पर राजी ना होंगे, खैर में पसो पेश ना करेंगे, आखिरी सफ़ पे खड़े ना होंगे। बुलंद हिम्मती से सरफराजी आपको छोटे कामों और हकीर उम्मीदों में लगने ना देगी। ज़िल्लत तमल्लुको कासा लैसी के जरासीम आपके अंदर से मर जाएंगे, यानी दूसरों के आगे हाथ बढ़ाना। मुराद ये कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। बुलंद हिम्मत साबित कदम होता है, सख्त और दुश्वार मंजिलों से नहीं डरता, जबकि कम हिम्मत बुज़दिल और डरपोक होता है, इसका मुँह बंद रहता है। यहाँ आप तकब्बुर और बुलंद हिम्मती को एक समझ लेने की गलती ना कर बैठिए, यानी तकब्बुर और चीज़ है, बुलंद हिम्मती और है, क्योंकि ऐसे में एक बड़ा स्लाइट सा डिफरेंस होता है और हम उसको समझ नहीं पाते। तकब्बुर नेगेटिव चीज़ है जबकि बुलंद हिम्मती बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बुलंद हिम्मती आज़ाद मसालियत पसंद दिल के सर का ताज है, जो इसके लिए बायस तहारत है, पाकिस्की तरक्की और फजीलत के लिए कोशां होता है। बुलंद हिम्मत से जो महासिन यानी खूबियाँ और कारनामे छूट जाते हैं, इसे इन पर सख्त रंज और हसरत होती है और वह इंतहा तक पहुँचने और मकसद के हसूल की मुसलसल जिद्दोजहद में लगा रहता है। बुलंद हिम्मती वारसीन अम्बिया का जेवर है, जबकि किबर ऐसी बीमारी है जो बदबख्त जाबिरों की इल्लत है। अलुफ हिम्मती इंसान को हमेशा ऊपर उठाती है और किबर हमेशा उसे नीचे गिराता है। लिहाजा तालिब इल्म अपने आप को बुलंद हिम्मती का आदी बना, इससे किनारा कशी न कर। शरा ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से फ़िक्ही काम में बुलंद हिम्मती का ख्याल रखा है ताकि इंसान हमेशा बेदार रहे और इनको गनीमत समझे। इसमें से एक यह है कि मुकल्लफ अगर पानी ना पाए तो तयम्मुम मुबाह, यानी पानी के बगैर वजू नहीं होता। एक अगर जगह भी खुश्क रह जाए नाखून बराबर, लेकिन पानी है ही नहीं तो तयम्मुम काफ़ी है। कोई पानी ख़रीदने के लिए कीमत देना चाहे तो इसको लेना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इससे हिम्मत में पस्ती आती है। इसी पर क्यास कर लीजिए बकौल शायर, ऐसी बुलंद हिम्मतें जैसे सूरज महबूब को पैगाम दे और चांद चांदनी में हरूफ लिख दे। अल्लाह अल्लाह, हिम्मत कारगाह हयात और रस्म जिंदगानी में क्या क्या कारनामे अंजाम देती है। शायर ने कहा कि जिद्दोजहद किए जाओ हत्ता कि आँख दूसरी आँख पर भारी पड़ जाए, एक दिन दूसरे पर गालिब आ जाएगा। बड़ी बात है, लफ्ज़ तो बड़े मुश्किल थे लेकिन पैगाम बड़ा खूबसूरत है। और वो कह के हिम्मत मर्दा मदद खुदा, डोंट लूज़ द होप, आगे बढ़िए, अल्लाह आपके साथ है, तो हमालिया जितनी हिम्मत और हौसले। कैसे होता है ये लिखिए, यानी जो लोग बुलंद हौसले ले होते हैं ना, और आपके ख़ानदानों में भी होंगे, फैमिलीज़ में भी कुछ ऐसे किरदार होते हैं ज़िंदगी में बड़े ही झटके लगे लेकिन हिम्मत नहीं टूटी, तो क्या फ़ायदे होते हैं बुलंद हौसलों से? पहली बात है कि मुस्बत सोच इख्तियार की जाती है। जो बुलंद हौसला इंसान है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तभी तो जीता। आप देखिए ना, कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव आ भी जाता है आपकी बॉडी में तो इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो इम्यूनिटी कैसे आती है? पॉजिटिव बंदे के पास होती है, जो हर वक्त इस खौफ में कि मुझे कुछ हो ना जाए उसके अंदर, तो वो बड़ी जल्दी जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के इज़्ज़त से खैर उसको नवाजी जाती है, अल्लाह ऐसे बंदे के ऊपर बहुत सारी खैर लेकर आता है, फिर इस तरह दर्जे कमाल से सरफराज होता है ऐसा बंदा। अल्लाह को भी बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे बंदे। आपने फरमाया कि कमज़ोर मोमिन भी अच्छा है, लेकिन अल्लाह को मज़बूत मोमिन अच्छा लगता है। फिर इस तरह खैर में पसो पेश नहीं करता ऐसा बंदा, बढ़ता है आगे से आगे और फिर आखिरी सफ़ में खड़े नहीं रहते। ये लोग पहली सफ़ों के लोग होते हैं, ये नहीं कि अब मजबूरी है, सब ने कह दिया अगर हमने यस ना की तो फिर तो बुरा लगेगा, नहीं, वो साबिकून अव्वलून होते हैं, वो जन्नतियों की लिस्टों में भी सबसे आगे होंगे, क्योंकि दुनिया में भी हर काम पे लब्बैक कहते हुए वो आगे से आगे थे। फिर इसी तरह से आप देखिए कैसे लोग तकबर नहीं करते, इंतहा तक पहुँचते हैं, और बुलंद हिम्मती अंबिया कराम के वारिसों का जेवर है, क्योंकि अंबिया कराम खुद उलुल अज़म थे। असल में आप बुलंद हिम्मती को उलुल अज़म होना भी कह सकते हैं, और साबित कदम रहते ही वो हैं। हर काम के एंड पे वही लोग बैठे होंगे जो बुलंद हौसले वाले होंगे, कई तो पहले ही जा चुके होते हैं। कितने लोग हैं जो एंड तक रहते हैं, ये वही हैं जिनकी हिम्मतें बुलंद हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें बड़ी हिम्मत दे।